जय गुरुदेव जय गुरुदेव
जय गुरुदेव जय गुरुदेव
ओम अशरण शरण शरण प्रभु ले
ओम अशरण शरण शरण प्रभु ले
ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव
ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव
गुरु राखहिं जो को पविधाता वचन प्रतीतन जाई
गुरु के वचन प्रतीतन जाई
सपने हूँ शुभ मन सुख सिद्धिताई
सपने हूँ शुभ मन सुख सिद्धिताई
ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव
अमृतवाणी। अमृतवाणी के इस चरण में परम पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के मुख से कबीर का पद चुनर में दाग कहां लगल। इस गुरुवाणी का संग्रह 12 जुलाई 1996 को हमने बरचर स्थित महान ऋषि और मुनियों के तपोवन में किया था। विश्वास है कि आप इस महान गुरुवाणी को सुनकर अपने जीवन में क्रियान्वित करने का प्रयत्न करेंगे।
तो चुनर में दाग कहां से लागल, यह चुनरी मोरे रंग महल की बड़े जतन से राखल। आठ कोठड़िया 10 दरवाजा 10 में ताला लागल। चुनर में दाग कहां से लागल, दोई दोई सिपहिया द्वारे पे ठाड़ी सासुनन दिया जागल। नामे मोही सासुनन दिया ना को देवर लागल। चुनर में दाग कहां से लागल, नामे मोही गोदी के बलकवन चुनर भैल कस काजल। कोनो अनरूप से चोरवा आइल दाग लगा के भागल। चुनर में दाग कहां से लागल, यह चुनरी भैया मलमल धोइन धोवत धोवत भई पागल। कहत कबीर सुनो भाई साधो हरि जी से नहिया लागल। चुनर में दाग कहां से लागल, दाग कहां से लागल। चुनर में दाग कहां से लागल। संत कबीर एक महापुरुष थे, जैसा कि अनादि काल से होते आए हैं। सूर तुलसी नानक वशिष्ठ विश्वामित्र वाल्मीकि सनत सनातन उसी परंपरा में संत कबीर भी एक महापुरुष थे। उन्होंने वो सगुण उपासक तो जीव शिव सब प्रगटे वे ठाकुर वे दास कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आश। कबीर के चिंतन का नाम राम था और आराध्य भी राम थे। राम नाम दुर्लभ अति और एते नहीं काम, आदि अंत अरु युग युग राम ही ते संग्राम। राम नाम थोड़ा कठिन है, कठिन है तो क्यों झंझट में पड़ते हो, छोड़ो। तो कहते हैं और एते नहीं काम, दूसरी किसी विधि से कल्याण संभव नहीं है, इसलिए आदि भजन की शुरुआत, अंत प्राप्ति काल, इसमें चाहे जन्म जन्मांतर लग जाए, यदि झगड़ा है तो राम से। क्यों राम से झगड़ा करोगे तो रामत्व प्राप्त कर लोगे, उनका धाम पा लोगे, और जीवों से झगड़ा करोगे तो बदले और बदलों के लिए जन्म, अर्थात उनके आराध्य नाम चिंतन का नाम राम। भजन में हमारे और भगवान के बीच में यदि रुकावट है तो चित्त वृत्ति और कोई नहीं, वृत्तियां अनंत है। महापुरुष पातंजलि इत्यादि ने 5 भागों में बांटा, उसी वृत्ति को संत कबीर ने चूनर की संज्ञा दी। चूनर में दाग कहां से लागल, जो हर महापुरुष ने वही निर्णय दिया, दाग चित्त में ही लगते। जो निज मन परिहरे बिकारा तो कत द्वेत जनित संस्कृति दुख संशय शोके अपारा। कहीं मन विकारों का त्याग कर दे तो अपार संस्कृति का शोक दुख और संताप भला क्यों रह जाए। तो शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन कीने बरियाई, त्यागन गहन उपेचनी अहि हाटक तृण की नाई। विटप मध्य पुतरी का सूत महु कंचुक भी नहीं बनाए, मन में तथा लीन नाना तनु प्रगटते अवसर पाए। एक वृक्ष में नाना प्रकार के फर्नीचर, चाहे पलंग बना लो चाहे घर के चौखट बनाओ, कोई भी फर्नीचर बन सकता है। सूत के अंतराल में नाना प्रकार के वस्त्र, चाहे धोती बनाओ चाहे कुर्ता चाहे पैंट चाहे पैरासूट, सब उस तंतु में विद्यमान है। ठीक इसी प्रकार मन में अनंत विधाता की सृष्टि के शरीरों की रील विद्यमान है, जब जिसका नंबर आता पिंड रूप में फेंकता रहता है। असन वसन पशु वस्तु विविध विधि वशमणि में रह जैसे, स्वर्ग नरक चरे अचर लोक बहु बसत मध्य मन तैसे। एक बहुमूल्य मणि में असन माने भोजन, वसन माने वस्त्र, इज्जत प्रतिष्ठा धन और धाम सवारी साधन सब विद्यमान है, कारण कि उसकी कीमत उतनी बड़ी है। ठीक इसी प्रकार मन में स्वर्ग और नरक, चर और अचर सारे लोग विद्यमान है। चित्त को मन और चित्त पर्यायवाची शब्द है, इस चित्त के अंदर सब के धब्बे पड़े हैं। जब जिस संस्कार का नंबर आता है पिंड रूप में वो धब्बा उबड़ा जाता है, कबीर ने उसको दाग की संज्ञा दी। तो चुनर में दाग कहां से लागल, चुनर में दाग कहां से लागा, ये उस स्तर का भजन है जब एक साधक सारा संयम साध चुका है, अब दाग की कोई संभावना रह नहीं गई, फिर ये दाग कहां से लगा। तो भला चुनरी आपकी कैसी है, तो यह है चुनरी मोरे रंग महल की, बड़े जतन से राखल। ये चुनरी रंग महल की, मैं तो गिरधर के रंग राती, मीरा कहती मैं गिरधर के रंग में रंग गई। सब रंग कच्चा और सांवरिया रंग पक्का, एक हरि का रंग पक्का है, उस सदैव विद्यमान रहता है, एक रस से अपरिवर्तनशील है, और जितने सृष्टि में रंग रुतबे सब परिवर्तनशील है। आयु पूरी करके ब्रह्मा भी कलेवर बदल देता है। एक ही रंग, एक ही स्वरूप अक्षुण्य है परमात्मा का, जिससे संसार के सारे जीवों ने थोड़ा थोड़ा रंग आभा प्राप्त की है। कबीर कहता है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। परमात्मा को एक कलर की संज्ञा दी और उस प्रभु की आभा प्रकाश देखने मैं गया तो जित देखो तित लाल, और जहां स्पर्श किया तो मैं भी हो गई लाल। वो एक ऐसा स्वरूप है जो सदैव एक रस है और उस परमात्मा से ओतप्रोत मेरी चूनर है। गिरधर के रंग राती, कबीर कहता मेरा चित भगवान के रंग में रंगा है। तो यह चुनरी मोरे रंग महल की, अर्थात ये परमात्मा के रंग से जहां से संसार का हर जीव स्वरूप पाता है, रंग आभा प्राप्त करता है, उस घराने की है, अर्थात प्रभु में ओतप्रोत है। और बड़े जतन से राखल, बड़े श्रम के साथ इस चुनर को रखा जाता है। सांसारिक चित्त में श्रम नहीं करना पड़ता, वो कहीं भी छलांग भरेगा तो माया है। लेकिन परमात्मा के रंग में रंगी हुई चित्त को बड़े कठोर संयम के साथ यत्न करके रखना पड़ता है। तो कबीर कहता है रंग महल की है चूनर, हमारा चित्त हरि के रंग में रंगा हुआ है और इसको बड़े यत्न करके रखा है हमने। कौन सा यत्न किया है आपने? इस पर कहते हैं आठ कोठड़िया दस दरवाजा, अष्टदा मूल प्रकृति माया का ही सूक्ष्म नामकरण है। दस इन पांच ज्ञानेन्द्रिय और मन बुद्धि और अहंकार, सत्रह स्तम, ये अष्टदा मूल प्रकृति है। लेकिन इस प्रकृति के भोगने के रास्ते हैं दस, दसों इंद्रिय, इनके द्वारा ही प्रकृति का आदान प्रदान होता है। तो आठ कोठड़िया दस दरवाजा, माया को भोगने के दस द्वार। दशहूं में ताला लागल, और हमने दशों में ताले लगा दिए, अर्थात दशों इंद्रियों को हमने संयमित कर लिया। भगवान कृष्ण कहते हैं सर्व द्वाराणी संयम, इंद्रियों के सारे दरवाजों को संयमित करके, मन को हृदय देश में निरोध करके, ओम का जाप करते हुए देह का अध्यास छोड़ देता है, वो परम पद को प्राप्त होता है। उसी का ट्रांसलेट जैसा है कबीर की वाणी में कि कौन सा बड़ा यत्न किया, आठ कोठड़िया है अष्टामूल प्रकृति, जिसके दस दरवाजे हैं प्रकृति के भोगने के रास्ते, और दशों में हमने संयम का ताला लगा दिया। फिर ये चुनर में दाग कहां से लग गया, समझ में नहीं आता भूल कहां पर है। अगले पद में कहते हैं दूसरी बड़ा यत्न क्या किया, तो दोई दोई सिपहिया द्वारे पेठाड़ी, सासु ननदिया जागल। पहले तो ताला लगा था, पहला यत्न। दूसरा दो सिपाही दरवाजे पे ठाड़े, अभ्यासेन तु कौनते वैराग्यन च गृह्यते। अर्जुन वास्तव में ये मन ये चित्त वायु से भी तेज चलने वाला है, किंतु सतत अभ्यास और वैराग्य के द्वारा निस्संदेह ये चित्त निरोध हो जाता है और रुक जाता है। एक महापुरुष कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इन चित्त वृत्तियों का भली प्रकार निरोध हो जाता है। तो चिंत इष्ट प्राप्ति के लिए साधन समझकर सतत प्रयत्न का नाम तो अभ्यास है, और देखी और सुनी हुई विषय वस्तुओं में राग का त्याग, वैराग्य, ये दो सिपाही है। यहीं से साधना आरंभ होती है, और जब तक दर्शन नहीं करा देते तब तक इनका प्रयोग उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर होता है, लेकिन होता अवश्य है। तो ये दो सिपाही हैं, ठीक दरवाजे पर ये खड़े हैं। अभ्यास सही है और वैराग्य पक्का। और हृदय देश में क्या अवस्था है? सास नण दिया जागल। एक तो सास जो संसार में सबको उपलब्ध है, लेकिन दूसरी हृदय देश योगिक परिभाषा में सास कहते हैं स्वांशा को। ये सबकी रिश्तेदार है, सबको जहां तहां फेंकने वाली है। प्रश्न लंबा होगा इसलिए नहीं कहेंगे। सास कहते हैं स्वांशा को, हमारी श्वास जागृत है। पूज्य महाराज जी का कहना था, कोई साधु यदि श्वास का भजन नहीं जानता, उसे महापुरुष लोग अपनी कुटिया में दो रोटी भी नहीं देते थे, इसलिए कि स्वयं गुमराह है और दूसरों को घूम घूम के पथभ्रष्ट ही तो करेगा। सारी साधना का उतार चढ़ाव श्वास पर है। जब नाम आगे चल के जब मंत्र की श्रेणी में पहुंचेगा, सूक्ष्म होगा, तो उसका उतार चढ़ाव श्वास पर है। तो हमारी श्वास जागृत है, श्वास पर श्वास का साध भजन जागृत है। और स्वार लाखा भजन करो, यदि प्रेम का प्रवाह नहीं है तो व्यर्थ है। तो श्वास नणदिया जागल, हमारा नियम जागृत है। नेह आनंद से नानंद, प्रेम स्नेह में विभोर होके नियम का परिपालन, तो हमारा नियम जागृत है। ये नहीं कि दो दिन भजन किया और तीसरे दिन निद्रा आ गई, तो नियम कैसा? नियम उसे कहते हैं, खाना अनिवार्य है, सोना अनिवार्य है, पानी पीना अनिवार्य है। ऐसे ही नियम उसे कहते हैं, अनिवार्यता का रूप ले ले जीवन में, भले दरवाजे पे लाश पड़ी हो लेकिन चिंतन का क्रम न टूटे। तो हमारी नियम जागृत है, श्वास प्रश्वास की भजन जागृत है, विवेक और अभ्यास और वैराग्य का पहली प्रकार दरवाजे पे पहरा लगा है। जहां अभ्यास से वैराग्य, वहां शत्रु प्रवेश नहीं कर पाता, काम क्रोध मोह लो प्रवेश नहीं कर पाते। फिर कारण क्या है कि चूनर में दाग लग गया? आगे कहते हैं कि जिसका भजन बहुत अच्छा होता है उसको अपना भजन का भी मोह हो जाता है। इस पर कहते हैं, नामे मोही सासु नण दिया, ना को देवर लागल, चुनर में दाग कहां से लागल। बेशक श्वास प्रश्वास की क्रिया जागृत है, नियम भी भरी परिपक्व है, सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन इस नियम से और इस श्वास की जागृति में हमारा कोई प्रेम नहीं है, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। अरे मान लो भजन बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान तो नहीं है ना, भगवान रिजल्ट तो नहीं दिखाई पड़ा। इस नियम और भजन के द्वारा हम जिसे ढूंढते थे वो तो नहीं मिला, इसलिए इससे मैं मोहित नहीं हूं, इससे मुझे कोई संतुष्टि नहीं। और ना को देवर लागल, वर माने होता है श्रेष्ठ, विप्रवर पूज्य वर, वर माने श्रेष्ठ सर्वोपरि। एक तो सर्वश्रेष्ठ थे भगवान जिनका हम भजन करते हैं, इसके सिवाय कभी कभी साधकों को भ्रम हो जाता कि इसकी अपेक्षा कहीं वो देवता ज्यादा ताकतवर तो नहीं है, वो गुरु महाराज से कहीं वो गुरु महाराज तगड़े तो नहीं है। द्वयंवर दूसरा भी कोई श्रेष्ठ, हमारे मन में ऐसा भाव कभी नहीं आया, ऐसा भी कोई आक्षेप द्वंद नहीं आया मेरे हृदय में, फिर कारण क्या है, दाग कहां से लगा। एक मियां और एक हिंदू मित्र थे, साथ साथ जा रहे थे, संयोग से एक नाला पड़ गया बीच में और कोई रास्ता ही नहीं, उसको डांकना ही था, इधर जलाशय उधर जलाशय, यदि इतना डांक जाए तो पार। तो और भीतर बड़ा उबड़ खाबड़ भी था, गहरा भी था, तो बोले भाई अब तो कोई बात नहीं, कोई रास्ता नहीं बचा है पार होने का, एक उपाय है अपने अपने इष्ट देव का स्मरण करो, डांक जाओ। तो पहले मियां डांका, बोले या खुदा, और किया जंप, पार हो गया। और फिर साथ में जो पंडित थे वो चक्कर में पड़ गए, लगता है खुदा में ताकत है जरूर, नहीं तो ये पार कैसे होता है। तो बोले हे राम, हे हनुमान जी, हे खुदा, इतने में गिर पड़े नीचे, संशय में आदि शक्ति तो वैसे ही खत्म हो जाती है। हे राम, हे खुदा, राम खुदा इतने में धड़ाम, तो राम खुदैया में पड़ जाता है, उसका भी विनाश हो जाता है, संशय आत्मा विनश्यति। भगवान सृष्टि में एक से दो कभी हुआ ही नहीं, तो दूसरा वर श्रेष्ठ आया तो कहां से आया, हो ही नहीं सकता, लेकिन कभी कभी ये माया है ना, संदेह हो ही जाता है। तो कबीर कहता है मैं सांस और नियम की जागृति पर भी मुझे कोई संतुष्टि नहीं है। भरत को तब तक संतुष्टि नहीं मिली जब तक हनुमान ने आके कह नहीं दिया कि राम आ गए, तब तक तो भरत को अपने भजन का भी कोई भरोसा नहीं था, बल्कि यूं कहने लगा कि जो करनी समझे प्रभु मोरी, तो नहीं निस्तार कलप सतकोरी। मेरी करनी पर प्रभु यदि विचार करेंगे तो 100 कलप तक भी मेरा निस्तार नहीं हो सकता। क्या करनी भरत की खराब थी, 5 मिनट बाद तो हनुमान पहुंच गए और राम पहुंच गए। साधक ज्यों ज्यों करीब पहुंचता त्यों त्यों अपनी हवा भर कमी को भी पहाड़ के समान महसूस करने लगता है। तो मैं अपने भजन से संतुष्ट भी नहीं हूं, ना मैं मोही सासु नण दिया, और ना को देवर लागल, नहीं कोई दूसरा श्रेष्ठ सर्वोपरि हमारी निगाह में चढ़ा कि चित्त उसमें भटक गया हो, ऐसी भी कोई दरार नहीं पड़ी। फिर इस हमारे इतने संयत चित्त में दाग पड़ा तो कहां से पड़ा। अगले पद में कहते हैं कि नामे मोही गोदी के बलकवा, गो माने मन, गो शब्द इंद्रियों का परिचायक, वैदिक शास्त्रों में यह शब्द बहुत ही सदैव महत्वपूर्ण रहा, कालांतर में भाषाएं बदल गई, इसलिए कहना पड़ता है गो माने इंद्रिय, पहले गो का माने इंद्रिय नहीं था, शब्द निकला लोग समझ जाते थे हाथ पांव नाक कान की ओर इंगित किया जा रहा है। तो इंद्रिय संयम, श्वास निरोध हो चली, संयम परिपक्व है, अभ्यास और वैराग्य का सच्चा ड्यूटी है, 10 इंद्रियों में ताले भी लाख है, ऐसी परिस्थिति में भगवान हृदय में उतर आते हैं। गो माने मन सहित इंद्रिय, इन इंद्रियों के अर्ताल अंतराल में प्रभु का स्वरूप उभर आता है, लेकिन है बालक रूप में, और जहां स्वरूप हृदय में संचारित हुआ तो बहुत से लोग उतने ही में निमग्न हो जाते, मुग्ध हो जाते। तो महापुरुष के कबीर कहता है कि ना मैं मोही गोदी के बालक हुआ, इंद्रियों के अंतराल में जो स्वरूप उतर आया प्रभु का, उतने ही से मैं संतुष्ट नहीं हूं, भले स्वरूप उतर आया हो, मैं तो अलग हूं, हमें तो समाहित नहीं किया। और नामे मोही गोदी के बलकवा, चुनर भइल कस काजल। फिर ये हमारी चूनर एकदम काजल कैसे हो गई? ये आवरण आया तो कैसे आया? अब बताते हैं कि कैसे आया। कोनो अनरूप से चोरवा आइल, दाग लगा कर भागल, चुनर में दाग कहां से लागल। कोनो अनरूप से, मेघनाथ लड़ता था तो अदृश्य होकर लड़ता था, और हर विकार आता तो अदृश्य होकर ही आता है, लेकिन उनसे भी एक सूक्ष्म विकार है संस्कार, वो बेरूप का है, पता भी नहीं उसका, कोई आसार भी नहीं है हमारी, और लेकिन वो प्रकट होता तो अनायास प्रकट होता है, वो बेरूप का है। कोनो अनरूप से चोरवा आइल, दाग लगा के भागल। एक बार संस्कार घटित होगा, बार बार नहीं आएगा, एक बार आया, जिस श्रेणी का संस्कार वैसा रूप खड़ा किया और भागा, फिर वो दोबारे नहीं आता। करण के पास एक चुनचुक नाम का नाग आया, बोले मैं अर्जुन को मार डालूंगा, तुम मुझे छोड़ दो, मैं स्वयं नहीं चल सकता, जब कोई योद्धा चलाए। उसने अपने तरकस में रख लिया, जहां चुनचुक को छोड़ा तो भगवान कृष्ण ने रथ को नीचे दबा लिया, अर्जुन के मुकुट का स्पर्श करते हुए चुनचुक आगे निकल गया। फिर क्रोध में वापस आके बोला कर्ण से, बोले एक बार छोड़ो, मैं एक जबड़ा तो लगा दूंगा पृथ्वी पर और एक आकाश में, अब मैं कृष्ण और अर्जुन रथ समेत निगल जाऊंगा। बोले चल भाग, एक बार छोड़े हुए बाण को मैं दोबारे नहीं छोड़ता, परिणाम चाहे हार में हो चाहे जीत में। तो कर्म रूपी करण ये विजातीय शत्रु है, पांडवों का सगा भाई और प्रबल शत्रु है, प्रश्न अलग। चुनचुक चित्त के अंतराल में जो संस्कारों की रील है, वो जब घटित होती तो कर्म का रूप ले लेती है, एक ही बार घटित होती है, बार बार नहीं। इसलिए कोनो अनरूप से चुरवा आयल, हमारा चित्त शांत है, संयम परिपक्व है, भजन जागृत है, बाहर पहरा लगा है, इंद्रियों के सभी दरवाजों पर भली प्रकार लाख है, संयम है। अब हमारी ओर से, साधक की ओर से कोई भूल नहीं है, इससे जो करना था कर डाला। इतने पर भी जो भी अंतराल में जो छिपा संस्कार है अनायास प्रकट होगा, और चूनर में एक कालीमा फेंक जाएगा, लेकिन दाग लगाया और भागा, फिर वो गोल हो जाएगा। किंतु ये संस्कार काटे जा सकते हैं, उसका उपाय बताते हैं। यह चुनरी भैया मलमल धोइन, धोवत हो गई पागल। इस चित्रूपी चुनरिया को हमने मलमल के धोया, सतत अभ्यास के द्वारा धोया, और इतना धोया कि धोवत धोवत हो गई पागल। धोते धोते एक नशा सवार हो गया। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी, लोग मीरों को पगली कहने लगे। सुतीक्षण जब चला भजन में, जब नशा हो गया भजन का, तो को मैं चले हूं कहां नहीं बूझा, दिशी और विदिशी पंथ नहीं सूझा। एक अवस्था है, जड़ भरत काकभूषण सबको इस अवस्था से गुजरना पड़ा। हम लोगों के गुरु महाराज को भी लोग पागल ही कहा करते थे। महाराज कहें कोई आके बैठ जाए तो मन करे कब उठ के चला जाए, बड़ा आनंद चिंतन में। तो इस चूनर को हमने मल मल धोई, धोवत धोवत हो गई पागल। क्या सचमुच पागल हो? तो कहते नहीं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि जी से नहिया लागल, चुनर में दाग कहां से लागल। कबीर कहता नहीं, हरि जी से स्नेह की डोरी लग गई। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हूं ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, लेकिन उनको खोज निकालने की कुंजी केवल प्रेम है। प्रेम से प्रगट होते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हमने सुना नहीं, हमने इस बात को कहीं पढ़ा नहीं, बल्कि मैं जाना, मैंने प्रत्यक्ष जाना है उसे। तो कबीर कहता, मैं पागल नहीं बल्कि हरि जी से नहीं अलागल। भगवान से सचमुच जब डोरी लग जाती है तो मनुष्य की दशा पागलों जैसी हो जाती है। तो भगवान को इस चित्त का दाग छुड़ाने का एक ही उपाय है कि स्नेह की डोरी, भजन की मलमल के चुनर को धोना, अथत सतत अभ्यास, इसका क्रम तब तक न टूटे जब तक अंतिम संस्कार भी मिट न जाए। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, असाध्य कुअंक घोर नरक और यातना क्रम में लिखी है, वो भी मिट जाएगा। मंत्र में वह क्षमता है। एक जगह कबीर कहता है कि राम नाम का साबुन ले ले कृष्ण नाम धरियाई, अपने गुरु को कर ले बरेठा, जन्म दाग धुल जाई, चोलिया काहे ना धुलाई। राम का साबुन लो, कृष्ण नाम की दरियाई, गुरु को बना लो धोबी, जन्म जन्मांतरों का दाग भी धुल जाएगा। तो इस चूनर को हमने मल मल के धोया, अथत सतत अभ्यास अनुराग पूरित हृदय से धुलाई किया, और इसी धुलाई का एक स्तर ऐसा आया, धोवत हो गई पागल, मतलब नशा सवार हो गया भजन का। क्या सचमुच पागल? तो कहते नहीं, हरि जी से नहीं अलग। कबीर के चिंतन का नाम राम, और आराध्य देव भी एक हरि ही थे। परमात्मा का एक नाम हरि है, क्यों कि जो जिस पथिक को अपनाते हैं भगत को, उसका सर्वस्व पाप पुण्य हर लेते हैं और बदले में अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं, इसलिए उनका एक नाम हरि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की।